क्या आप जानते हैं कि आप परी कथा की कहानियों को एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन और कई अन्य पॉडकास्टिंग एप्स और वेबसाइटों पर सुन सकते हैं? अधिक जानने के लिए बालगाथा.com पर जाएं।
फिलोटिस मेंढक का साहसिक सफरनामा। मिलिए पेड़ पर रहने वाले फिलोटिस मेंढक से। फिलोटिस, जिसे कुछ दोस्त पाथ बैंग के नाम से जानते हैं, उसका परिवार पिछले सैकड़ों सालों से बड़े पेड़ से नीचे ही नहीं उतरा। फिलोटिस, जिसे प्यार से उसके दोस्त मिंढकू कहते थे, पैदा होने के बाद से जिंदगी में कभी भी बड़े पेड़ से नीचे नहीं उतरा था। उसके पिता, माँ, दादा दादी और यहाँ तक कि पर दादा पर दादी भी कभी बड़े पेड़ से नीचे नहीं उतरे थे। और उनसे पहले की बात तो कोई नहीं जानता। मिंढकू के परिवार को तो बस यही याद है कि वे लोग सदा से उसी बड़े पेड़ पर रहते आए हैं। वह उसी पेड़ के छेद में इकट्ठे हुए पानी में पैदा हुआ था और जब वो बहुत छोटा था तो उसी पानी में छप छप करता घूमता था। उससे पहले उसके पिता भी ऐसे ही पानी में छप छपाते थे। कभी कभी दूसरे मेंढक उसका इस बात पर मजाक उड़ाते थे कि वो तो कभी बेंची यानी कि टैडपोल मेंढक का नन्ही मछली जैसा दिखने वाला बच्चा बना ही नहीं था।
तुम बेंची नहीं बने, तुम तो बेंची बने ही नहीं,
वे नारे लगाते। लेकिन मिंढकू पेड़ पर रहने वाला मेंढक था और उसे इस बात का गर्व था। बड़ा पेड़ शोला के घने अंधेरे और नमी भरे जंगल के बीचों बीच था। वहां हमेशा ओस टपकती और फफूंद की गंध भरी रहती थी। शोला के गर्म जंगल और घास के सर्द मैदान। शोला का जंगल एक घाटी के पेंदे में टिका था और लहराती घास से ढकी पहाड़ियों से घिरा था। शोला के जंगल की पतली संकरी पट्टियां सांप की तरह बल खाती हुई पहाड़ी ढलानों पर चढ़ती है जहां बरसाती धाराएं बहती है। घास के मैदानों में मौसम चाहे कितना भी कठोर हो जाए, शोला के अंदर मौसम हमेशा ठंडा रहता है। मिंढकू के पिता कहते थे कि घास के मैदान बड़े ही कठोर हैं। वहां दिन में जला देने वाली गर्मी होती है और रात को बर्फ की तरह जमा देने वाली ठंड, लेकिन हमारे शोला में हमेशा शीतल और नम रहता है, इसलिए हमेशा यहीं रहना चाहिए। मिंढकू और उसके दोस्त अपनी दुनिया के बारे में बातचीत करते हैं। भवानी, बंगितपाल, सिसपरा, नादुगानी, मड्डप मल्लई, शोला और कुछ आसपास की जगहें मिंढकू इन सभी नामों को सुनता, पर उसे पता नहीं था कि यह जगहें है कहाँ। लेकिन उसके कुछ दोस्त काफी घूम चुके थे। एक वारबलर चिड़िया हर साल हिमालय से उड़कर आती थी और उसे पश्चिमी घाट के चप्पे चप्पे के बारे में पता था। पश्चिमी घाट का एक छोटा सा हिस्सा नीलगिरी था, जिसका एक भाग मुकुरती था, जिसका नन्हा सा टुकड़ा था सिसपरा, जहां यह पेड़ खड़ा था। मिंढकू ने दुनिया देखने की ठानी अपने दोस्तों से बड़े से नीले समुद्र के बारे में सुनते ही मेंढकू ने उसे देखने का इरादा कर लिया। उसके मेंढक दोस्त उस पर हंसे। वारबलर ने बताया कि बड़ा सा नीला समुद्र तो उस समुद्र के सामने कुछ भी नहीं जो बहुत पहले सर्दियों में यूरोप से आते समय उसने देखा था। लेकिन मेंढकू ने जाने के लिए कमर कस ली थी और एक सुबह वह पेड़ की एक डाली से दूसरी डाल पर कूदता नीचे उतरा। वह धीरे धीरे नीचे की ओर सरका। उसके पंजों की गद्दियां पेड़ की छाल को पकड़े थीं। आखिर वह जमीन पर पहुंच गया। नम मिट्टी सूखे पत्तों से ढकी थी। छछूंदर सर सराता हुआ उसके पास से गुजरा। आसपास नीचे घोंघे और इल्लियां रेंग रहे थे। मेंढकू का जी तो ये किया कि फौरन बड़े पेड़ पर बने अपने सुरक्षित घर में लौट जाऊं, लेकिन वह फुदकता हुआ शोला के जंगल के बाहरी छोर की ओर चल दिया। बाहर खुले में जैसे जैसे वह रोशनी के पास पहुंचने लगा, मेंढकू का दिल तेजी से धड़कने लगा।
मुझे क्या मिलेगा? क्या यही दुनिया खत्म होती है या यहाँ मेंढकू का वह स्वर्ग है जहाँ भोजन की भरमार है?
आखिर जब वह वहां पहुंचा तो पाया कि वहां धुंध ही धुंध छाई थी। धुंध की भारी नम चादर घास के मैदान पर पसरी थी और मेंढकू कुछ देख नहीं पा रहा था। उसने बहुत दूर कहीं मेंढक के टर्राने की आवाज सुनी। पहली बार उसने धीरे से घास के मैदान पर कदम रखा। ठंड ने उसे हैरान कर दिया। वहां चारों ओर ठंडी हवा थी। जमीन पर ओस जमी हुई थी और डाल से गिरे पत्तों की परत की सुखद गुनगुनाहट की जगह वहां बस सूखी घास की सरसराहट ही थी। जरा सी देर के लिए धुंध छटी और मेंढकू ने बहुत हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। सामने का पूरा पहाड़ नीला था। वह कुरिंजी के कालीन से ढका हुआ था। कुरिंजी एक छोटी सी झाड़ी होती है जिसमें 12 साल में सिर्फ एक बार फूल आते हैं और शोला के छोर पर बुरांश के ऊंचे पेड़ों पर छटक लाल रंग के फूल खिले हुए थे। बुफो के साथ मुठ भेड़। जैसे जैसे मेंढकू पहाड़ पर नीचे की ओर आया, तेजी से बहते हुए पानी की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ ही मिनटों में वह एक पतली सी धारा के पास पहुंच गया जो छोटी सी पहाड़ी से नीचे उतर रही थी। उसके बीच में छोटी छोटी चट्टाने थी और चट्टानों से भरे एक कोने में ये बड़ा सा मेंढक बैठा था जैसा मेंढकू ने आज तक नहीं देखा था। मोटे सेठ सा बुफो मेंढक मस्त और संतुष्ट दिख रहा था। अंडों से भरी एक लंबी झिल्ली पानी में तैर रही थी जिसमें से जल्दी ही नन्ही बुफो बेंचियां निकल आएंगी। बुफो और उसके रिश्तेदार सारे देश में पाए जाते हैं। मैदानों में, जंगलों में, शहरों में बुफो सब जगह दिखते हैं।
अब अजी मेंढक साहब, क्या आप इस दलदल में रहती हैं?
मेंढकू ने पूछा।
मैं एक भेख यानी टोड़ हूँ, मर गए लो,
बुफो ने बड़ी अदा से कहा।
मैं तो हर जगह रहता हूँ।
सैलिए घास के मैदान में रहने वाली गिरगिट। सैली ए का जी घास के मैदान में ही लगता है। बाग बगीचों में रहने वाले अपने दूसरे गिरगिट रिश्तेदारों की तरह सैली ए भी जब चाहे अपना रंग बदल लेती थी। जब मिंडकू उसके पास पहुंचा तो वह हरे भरे रंग की बनकर अपने पीछे खड़ी घास जैसी हो गई। कुछ समय बाद जब उसे विश्वास हो गया कि यह नन्हा मेंढक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, तो वह फिर से नजर आने लगी।
नमस्ते, कैसी हो? मैं पेड़ पर रहने वाला मिंडकू मेंढक हूँ। मैं बड़े नीले समुद्र को खोज रहा हूँ, मिंडकू ने कहा।
आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ,
सैली ए बोली और छलांगे मारती पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। मिंडकू भी जल्दी जल्दी कूदता उसके पीछे चला।
उस पहाड़ी से नीचे उतरना, दूसरी पहाड़ी पर चढ़ना, दोबारा नीचे उतरना, फिर नदी के साथ साथ चलते चले जाना, फिर छोटी पहाड़ी पर चढ़कर तुम समुद्र को देख सकते हो,
उसने बताया। घास के मैदान का सांप अहेटुला। मिंडकू जल्दी जल्दी कूदता हुआ एक छोटे से रास्ते से बंगीतपाल घाटी की तरफ चला। वह घास पर लुढ़का, चट्टान पर फिसला और कोई पर स्केटिंग करता हुआ घाटी के एकदम बीच में पहुंच गया। पहाड़ों और धुंध के बीच मिंडकू को बहुत अकेला महसूस हो रहा था और अचानक वह उस प्राणी के एकदम सामने पहुंच गया जिससे मेंढक सबसे ज्यादा डरते हैं। कुछ ही इंचों की दूरी पर लंबी लपलपाती हुई सांप की जीभ और मुंदी सी आंखें सीधे मेंढकू की आंखों में झांक रही थी। मेंढकू तो डर से बुत बना खड़ा रह गया, लेकिन घास के मैदान के सांप अहेटुला के लिए आज बहुत बढ़िया दिन था। वह अभी अभी एक टोड़ को गड़प कर चुका था और अब उसे एक हफ्ते तक खाने की जरूरत ही नहीं थी। वह मजे मजे में सरकता मिंडकू के पास आया और उससे पूछने लगा कि तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं। मिंडकू ने अपने सफर का मकसद बताया, जिस पर अहेटुला ने जीभ लप लपाकर दाद दी। अहेटुला ने मिंडकू से कहा कि तुम मेरे पीछे पहाड़ के ऊपर तक चलो, वहां से मैं तुम्हें वह रास्ता दिखा दूंगा जो सीधा समुद्र तक पहुंच जाता है। नीला समुद्र। आखिर मिंडकू ने देखा तो पाया कि वह सामने वाली घाटी में है। आखिर बड़ा, बहुत बड़ा, नीला, बेहद नीला समुद्र उसके सामने था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां आसपास की पहाड़ियों की तरफ फैल रही थी। मिंडकू आंखें फाड़े समुद्र के नीलेपन को बहुत बहुत दूर जाकर, जहां धरती खत्म होती है वहां आसमान से मिलते देख रहा था। वो फुदकता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह माया नहीं है जो हवा, सूर्य और धुंध के जादू से बनी है। और जब वह समुद्र तक पहुंचा तो उसने डरते झिझकते अपना पंजा पानी से यूं छुआया जैसे समुद्र उसे निगल ही जाने वाला हो। पानी एकदम ताजा और ठंडा था और इसे छूने से शांति महसूस हो रही थी। मेंढकू ने ऐसा पानी पहले कभी नहीं देखा था। धाराओं का पानी तो बौराया सा बहुत तेजी से भागता था, बहस करता और गिड़गिड़ाता, शैतान बच्चों या गुस्से से पागल बड़ों की तरह। और भी बड़ा समुद्र। पेड़ के मेंढक तो उस थोड़े से पानी से ही खुश रहते थे जो पेड़ के छेदों में और तनों में जमा हो जाता था, और दो टेढ़ी बांची टहनियों के बीच में जमा जरा से पानी की तुलना में इतनी दूर तक फैला पानी तो पूरा ब्रह्मांड ही था।
अब तुम कहाँ जाओगे?
अहेटुला ने पूछा।
पता नहीं, मिंटकू बोला, मैं समुद्र देखने आया था और अब वह मैंने देख लिया। शायद अब मैं घर लौट जाऊंगा।
लेकिन अभी तो देखने के लिए बहुत कुछ बाकी है, अहेटुला बोला। उसके पुरखे पश्चिम से इस पहाड़ पर आए थे। अब जैसे कि एक इससे भी बड़ा समुद्र है।
और बड़ा समुद्र? मिंडकू चिल्लाया, ऐसा कैसे हो सकता है?
पश्चिमी जल संग्रहण क्षेत्र की ओर। वे पहाड़ की चोटी की ओर चले, लहराता बलखाता अहेटुला आगे आगे और फुदकता मिंडकू उसके जरा ही पीछे। वे पहाड़ की हथेली में फैले शोला के जंगल के पास से गुजरे। शोला से आती दालचीनी जैसी जड़ी बूटियों की जानी पहचानी खुशबू गर्मजोशी गीलेपन ने उन्हें पुकारा। शोला एक स्पंज की तरह है जो बरसात के तेज बहाव को सोख कर उसे अपनी हर दरार में हर चट्टान के बीच जमा कर लेता है। उसे अपनी हर परत अपनी मिट्टी अपनी चट्टान में सोख लेता है और फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके भागती हुई धाराओं के रूप में छोड़ता है। और फिर वो रुक गया क्योंकि उसके सामने एक पत्थर था, लेकिन वो बड़ा मुलायम गर्म लगभग भाप छोड़ता एक अजीब सी गंध वाला पत्थर था। हाथी, अहेटुला बोला।
क्या ये हाथी है?
वह बोला। उसे लगा कि यह उतना शानदार नहीं है जितना उसने सोचा था। नहीं बुद्धू, यह तो उसका गोबर है। हाथी तो तुमसे 100 गुना शायद 1000 गुना बड़े होते हैं।
लेकिन वो यहां कैसे पहुंचते हैं?
हाथी कहीं भी जा सकता है, अहेटुला ने भेद भरे ढंग से कहा और आगे बढ़ गया पहाड़ की चोटी पर। और तभी बारिश शुरू हो गई। बाल्टी भर भर कर पानी बरस रहा था जिससे घास के मैदान में नन्ही नन्ही धाराएं बहने लगी। यह बारिश महीनों होती रहती है, बारिश में भीगता हुआ अहेटुला चिल्लाया।
मैं जानता हूं,
मिंकू खुशी से चीखा। उसे बारिश बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन बारिश से रास्ता फिसलन भरा और मुश्किल हो गया था। मिंकू किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था लेकिन मिट्टी और घास से पार पाना कठिन था। बहुत ही देर बाद वे ऊपर पहुंच पाए। चारों ओर गाढ़ी धुंध छाई हुई थी। मिनकू ने आह भरी,
लगता है मेरी मेहनत बेकार ही गई।
लेकिन तभी धुंध छट गई। रंगारंग उभयचरों का खुला रंगमंच, सामने का नजारा हैरत अंगेज था। इसकी तुलना में अब तक मिनकू ने जो भी देखा था, पेड़, समुद्र, कुरुंजी के फूल, सब कुछ फीका लग रहा था। धुंध का पर्दा हटा तो दुनिया का सबसे शानदार रंगमंच सामने था। तीन ढलवा चट्टाने उस चोटी को घेरे हुए थी जिस पर मिनकू और अहेटुला बैठे हुए थे। उभयचरों के लिए खुला रंगमंच, अहेटुला बुदबुदाया। तीनों ढलवा चट्टाने हजारों फीट नीचे जिस जमीन से जुड़ी थी वह दक्षिण की ओर एक पठार में फैल गई थी और उत्तर की ओर हरे भरे पहाड़ों की शक्ल में ऊंची और ऊंची उठती चली गई थी। चीले टिटकारी भरते चक्कर लगा रही थी। पश्चिम दिशा नारंगी रंग में रंग गई। अस्त होते सूर्य ने पूरे दृश्य को एक सुंदर शांत रोशनी से नहला दिया। जब तक शाम धुंधलके में बदली और धुंधलका अंधेरे में, वे वहीं छोटी सी पहाड़ी पर पश्चिम दिशा की ओर देखते बैठे रहे। दूर, बहुत दूर, एक रोशनी की नन्ही सी कौंध झलकी। उस रोशनी के पास ही समुद्र है, अहेटुला बोला, और वो इस दुनिया के आखिरी छोर तक फैला है। साइलेंट वैली की तरफ उतराई। मिनकू ने इरादा कर लिया कि बड़े समुद्र तक जरूर जाएगा, लेकिन अहेटुला और आगे नहीं जाना चाहता था। उसने उसे साइलेंट वैली का रास्ता दिखा दिया। मिनकू हैरान था कि उस घाटी को साइलेंट वैली यानी मौन घाटी जैसा नाम क्यों दिया गया था। लेकिन कुछ देर में ही उसे समझ में आ गया कि उसका नाम ऐसा क्यों है। घाटी में एकदम सन्नाटा छाया था। पेड़ बहुत बड़े बड़े थे, ऊपर मौजूद शोला के पेड़ों से एकदम अलग, और वह जितना नीचे की तरफ बढ़ रहा था पेड़ और भी ज्यादा बड़े होते जा रहे थे। यहां धनेश, फ्रैगमाउथ और उल्लू जैसे अजीब से पक्षी थे, और उनसे भी अजीब जानवर। कभी कभी जंगल लंगूरों की और बंदरों की आवाजों से गूंजता रहता था, और शाम को चीखों और तरह तरह की आवाजों से भर जाता था। कुछ नए मेंढक दोस्त। बहुत ऊपर पेड़ों की फुनगियों में मिनकू ने चिड़ियों की आवाजें सुनी। ऐसी ही चिड़ियाएं उसने बड़े पेड़ पर अपने घर के आसपास उड़ती हुई देखी थी। उसने तेजी से भागते पानी में रहने वाली निकटी जैसे बहुत से मेंढक देखे जो पानी में डूबे पत्थरों के बीच रहना पसंद करते हैं। तेजी से आने वाले पानी के छपाके को झेलती चट्टान की सतह से चिट्टे वे दरारों से टर्राते रहते हैं, और धारा के पानी में तैरती गीली पत्तियों पर अंडे देते हैं। तभी उसने ऐसी अजीब आवाज सुनी जैसी पहले कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लगता था कि वह धरती के पेट से आ रही थी। वह मेंढक की आवाज से काफी मिलती थी और नहीं भी मिलती थी। किस्सा गुब्बारा मेंढक का। अजीब सा प्राणी उसकी तरफ बढ़ा आ रहा है। ऐसा अजीब जानवर उसने आज तक नहीं देखा था। वह काफी बेडौल और बदसूरत लग रहा था और उपजाऊ मिट्टी जैसे जामनी रंग का था। ऐसा लगता था कि वो आगे को बह रहा है बजाय चलने और कूदने के। लगभग वैसे ही जैसे कि मिट्टी का एक भाग एक अजीब मेंढक की शक्ल में जा उठा हो। उसकी सुअर जैसी नुकीली थूथन के अलावा मेंढकों को उसमें और कुछ भी नजर नहीं आया। अपने सुरक्षित ठिकाने से मेंढकों ने उस जानवर को आवाज दी। वह घबरा कर एक गुब्बारे की तरह फूल गया और अपनी चुंधियाई सी आंखों से चारों तरफ देखने लगा। तुम कौन हो? मेंढकों ने हिम्मत जुटाई। उसे सावधानी से देखते हुए उस प्राचीन प्राणी ने जवाब दिया,
मैं इस जंगल का सबसे बूढ़ा मेंढक हूं। मेरे पूर्वज यहां सबसे पहले आए थे। मुझे नासिका कहते हैं। मैं ज्यादातर जमीन के बहुत नीचे रहता हूं।
वहां नीचे बहुत अकेलापन होगा और अंधेरा और नमी भरी ठंडक भी,
मेंढकों बोला। नासिका मुस्कुराया, लेकिन उसके पतले मुंह के कारण मुस्कुराहट मुश्किल से ही दिख रही थी।
नीचे एक बहुत ही भरा पूरा संसार है,
वह बोला।
वहां के चूहे, छोटे छोटे कीड़े, गुबरेले, मकड़ियां, तिलचट्टे, बिच्छू और यहां तक कि सांप भी होते हैं।
सांप?
मेंढकों ने हैरानी से कहा।
हाँ, खूबसूरत चमकीले सांप। उनकी पूंछ पर एक नन्हा सा कवच होता है जिससे वे खुदाई करते हैं। लेकिन मुन्ने, तुम कहाँ रहते हो?
मैं तो पेड़ पर रहता हूँ,
मेंढकों ने कहा,
पहाड़ के ऊपर।
क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो?
इस बार नासिका ने हैरत से पूछा। उड़ने वाले मेंढक, छिपकलियां और सांप। मेंढकों ने सोचा कि पेड़ पर चढ़कर ताजा आकाश देखते हुए आगे की योजना बनाई जाए। वह चढ़ता चढ़ता पेड़ की फुनगी पर पहुंच गया। एक बादल ने घाटी को ढका हुआ था। धुएं की धज्जियां पेड़ों की चोटियों को ढके हुए थी। बादलों के छोटे छोटे घेरे प्रभा मंडलों की तरह बूढ़े पेड़ों पर मंडरा रहे थे। उड़ते हुए रंगों के कतरों ने मेंढकों के अजीबोगरीब ख्यालों में खलल डाला। उसने सोचा कि यह कुछ और चिड़ियाएं हैं, लेकिन अचानक एक मेंढक उसके साथ आ बैठा। वह दंग रह गया। उड़ने वाला मेंढक?
मैं राको हूं,
उड़ने वाला मेंढक ने कहा। उड़ने वाले मेंढक ने कहा। जल्दी ही राको के दोस्त उड़ने वाली छिपकली ड्रैको और उड़ने वाला सांप क्रिसोपीलिया उड़ते हुए उनसे मिलने पहुंच गए और फिर वे कूदने और उड़ने में मस्त हो गए। कम जहर वाले और बहुत ही जहरीले सांप। मेंढकों, बैम्बू पैम्बू नाम के कम जहर वाले सांप से मिला। फिर उसने एक चूहे खाने वाला सांप देखा जो पत्तियों और शाखाओं की जाली से छन कर आती सूरज की इक्का दुक्का किरणों की रोशनी में तांबई और चमकीला लग रहा था। अचानक एक बड़ा सा जबड़ा चूहे खाने वाले सांप के सिर के पास पहुंचा और उसे साबुत निगल गया। यह हन्ना था, सबसे जहरीला सांप जो दूसरे सांपों को खा जाता है। मिंटकू हैरानी से मुंह बाएं उसे देखता ही रह गया। हन्ना चमकीला पीले और काले रंग का और बेहद ही लंबा था। सच तो यह है कि आंखें फाड़ फाड़ कर देखने पर भी मिंडकू को उसकी पूंछ नहीं दिखाई दे रही थी। राणा का दर्शन शास्त्र। मिंडकू सोच में डूबा था कि उसे अभी और कितना चलना होगा। जंगल के छोर पर तो सब कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा था, उजाड़ शोरगुल वाला, जीवों से भरा हुआ। एक मैदान के किनारे वह बूफो से भी बड़े मेंढक से मिला, लेकिन वह खासा खुश मिजाज लग रहा था।
तुम मुझे राणा कह सकते हो,
मिंडकू से गले मिलते और उसका पेट सहलाते वह बोला।
यह मेरा असली नाम नहीं है, मेरा नाम तो बहुत बड़ा है और तुम्हें उसे बोलने में दिक्कत होगी।
राणा ने उसे बताया कि समुद्र तो बहुत दूर है और रास्ते में बहुत खतरे हैं, पेड़ तो बहुत ही कम है। जहाँ पहले कभी जंगल होते थे वहाँ अब खेत या शहर है। असली समुद्र और उस तक पहुँचने वाला रास्ता मेंढकों के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है।
घर का छोटा सा समुद्र दूसरे संसार के बड़े समुद्र जितना ही बड़ा और शानदार होता है,
उसने कहा। राणा ने कहा,
इतने रोमांचक और साहसिक सफर के बाद अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए।
मिंडकू घर को चला। मिंडकू ने जान लिया था कि दुनिया बहुत अजीब और खतरों से भरी है। उसे पानी की वह तेज धारा अच्छी नहीं लगी जहां निकटी रहता है, और वह नासिका की तरह मिट्टी के नीचे भी नहीं रह सकता। उसे तो पेड़ की चोटी ही भाती है पहाड़ों के ऊपर। और अब घर लौटने की घड़ी आ पहुंची है। फिलोटस मेंढक दुनिया भर में नहीं घूमा, लेकिन वह जितनी दूर तक गया उतनी दूर तक तो पेड़ पर रहने वाला कोई भी मेंढक शायद ही कभी गया होगा। पेड़ का मेंढक मिंडकू यानी फिलोटस पहाड़ों की ओर वापस चल दिया। उसे बड़े पेड़ पर अपने दोस्तों और परिवार के पास वापस जा पहुंचना था। जानकारी: पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला है जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट के साथ साथ दक्षिणी प्रायद्वीप से होकर महाराष्ट्र में ताप्ती नदी तक जाती है। शोला और घास का मैदान। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पहाड़ों के एकदम ऊपर एक अनोखी प्राकृतिक रूप से बनी दुनिया है जिसमें लहराते घास के मैदान हैं और उनमें कहीं कहीं बौने रह गए पेड़ों के छोटे छोटे सदाबहार जंगल हैं जिन्हें शोला के नाम से जाना जाता है। मेंढक और भेक। भेक या टोड़ एक तरह का मेंढक ही होता है। आमतौर पर भेक की खाल सूखी, सख्त और मस्सेदार होती है। वे दूसरे मेंढकों की तुलना में जमीन पर ज्यादा रहते हैं, लेकिन अंडे ज्यादातर पानी में ही देते हैं। वैज्ञानिक नाम। पौधे और जानवर लैटिन भाषा के अपने वैज्ञानिक नामों से ही जाने जाते हैं। इन नामों में उनका जीन्स या वर्ग और स्पीशीज यानी कि जाति शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर होमो सेपियंस मनुष्यों के लिए प्रयोग होता है। वैज्ञानिक नाम कभी कभी वर्गीकरण विज्ञान और किसी प्रजाति के अन्य प्रजातियों के अलग होने वाले विकास की नई खोजों के कारण बदलते भी हैं। मंच पर उपस्थिति के अनुसार पात्रों का परिचय। फिलोटस। फिलोटस पेड़ पर रहने वाले मेंढकों या बुश मेंढकों का समूह है जो भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। दूसरे मेंढकों के विपरीत फिलोटस स्पीशीज के अधिकांश मेंढक ऐसे अंडे देते हैं जिनका सीधा विकास होता है, यानी वे बेंगची न बनके अंडे में से पूरे मेंढक बनके निकलते हैं। पश्चिमी घाट के ज्यादातर बुश मेंढक अब राउर चेस्टीज जीन्स के हैं। बुफो भेक या टोड़ का ही एक जीन्स है। भारत में पाए जाने वाले टोड़ लंबे अरसे तक बुफो मेलनास्टिक्स के नाम से जाने जाते रहे। अब यह डट्टाफ्रिंस मेलनास्टिक्स के नाम से जाने जाते हैं। सैली ए। सैलिया अगामिड गिरगिट है। यह बगीचे में पाए जाने वाले गिरगिट कोलेटिस के परिवार का हिस्सा है। अहेटुला घास में पाए जाने वाले सांप का एक जीन्स है। भारत में सभी जगह पाया जाने वाला पेड़ों पर चढ़ने वाला सांप भी अहेटुला जीन्स की ही एक स्पीशीज का हिस्सा है। नासिका बट्रैक्स सह्याद्रेनेसिस नाम के मेंढक की खोज कुछ बरस पहले ही हुई थी। माना जाता है कि यह भारत में पाया जाने वाला सबसे पुराना मेंढक है, जिसका मतलब है कि उसमें 10 करोड़ से भी अधिक वर्षों से कोई बदलाव नहीं आया है। उसके सबसे करीबी संबंधी सेशेल्स में रहते हैं। निकटी। निकटी बट्राक्स तेज बहाव में रहने वाले मेंढक है जो पश्चिमी घाट की तेजी से बहती हुई धाराओं में पाए जाते हैं। राको। राकोफोरस भी पेड़ों पर रहने वाले मेंढक हैं जिनमें से कुछ विसर्पण की योग्यता के लिए जाने जाते हैं। वे झाग से जलाशयों के ऊपर लटकती पत्तियों पर अपने घोंसले बनाते हैं। ड्राको। ड्राको एक छिपकली है और क्रिसोपीलिया एक सांप है। दोनों अपनी विसर्पण की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। नाग अथवा ओफियोफेगस हन्ना संसार का सबसे बड़ा, लंबा व जहरीला सांप है जो सिर्फ दूसरे सांपों को ही खाता है। बैम्बू पैम्बू। यह आम तौर पर पाए जाने वाले हल्के जहर वाले बैम्बू पीट वाइपर नाम के सांप है। राना। राना मेंढकों का एक जीन्स है। अब यह कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। सांड मेंढक या फिर बुलफ्रॉग, जिसे पहले राना टाइग्रीना के नाम से जाना जाता था, अब उसे होप्लोबैट्रक्स टाइगरिनस के नाम से जाना जाता है। यह भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मेंढक है।
परी कथा की इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। क्या आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया? यदि ऐसा है तो हम आपकी प्रतिक्रिया या फीडबैक सुनना पसंद करेंगे। ऐसी कई कहानियाँ आप सुन सकते हैं mlftpodcast.in पर जाकर। इस कहानी का निर्माण गाथा स्टोरी ने किया है।